शांति, ओम शांति, ओम शांति। नागपुर सब जोन की तरफ से आप सभी भाई बहने पधारे हैं मधुबन तपोभूमि में। आज आपका आखिरी दिन है भट्टी का। वैसे तो मैं पहले दिन ही मिलती हूँ, लेकिन मैं मुंबई गई थी और आज के दिन आपसे मिलने का प्रोग्राम बनाया था। तो मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अवश्य आपने ये चार दिन बहुत अच्छे अनुभव किए होंगे, कई भाई बहनों के क्लासेस सुनकर, चार धाम की यात्रा कर, पांडव भवन का, मधुबन का वातावरण का लाभ लेकर अवश्य आपने अपने अंदर शक्ति भरी होगी और इसी शक्ति को अपने साथ बरकरार रखना। जब भी कोई बात आए तो मधुबन का ये मेडिटेशन हॉल याद करना कि हमने वहाँ पर ये भट्टी की थी और अपने आप को इतना मजबूत बनाया था, तो अब तो मैं हिल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकती, क्योंकि यही बाबा हमसे चाहते हैं। इसलिए आज विषय भी यही रखा है आज के वरदान अनुसार, स्वस्थिति से परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त करें। परिस्थितियां तो कदम कदम पर आती है, चाहे आप उन्हें परीक्षा कहें, चाहे विघ्न कहें, चाहे समस्याएं कहें, चाहे रुकावटें कहें, बंधन कहें, चाहे तूफान कहें, ये सब शब्द जो यूज होते हैं ये सब परिस्थिति के अंतर्गत कहेंगे। और वो परिस्थिति बाहर से आती है, वो परीक्षाएं बाहर से आती है, लेकिन कई ऐसी परीक्षाएं भीतर से भी आती है, हमारे संस्कारों के आधार पर उनके कारण से भी आती है। हमारे ही संस्कार बाधा डालते हैं, विघ्न बनते हैं और परिस्थिति खड़ी हो जाती है। लेकिन विडंबना तो ये है कि हम अपने को दोषी तो ठहराते ही नहीं हैं, हम तो यही सोचते हैं कि दूसरा दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, लेकिन है तो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब, मैंने ही अपने कर्म ऐसे बनाए हैं जो ये परिस्थिति हमारे सामने आई। फिर चाहे आप कितना भी औरों को दोष दो, कर्म तो हमारे ही है और हमको ही भोगने हैं। चाहे आप दोष दूसरे को दो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि परिस्थिति बदल जाएगी या सचमुच वही कारण होगा। भले दिखाई देता है उस दूसरे का कारण है, लेकिन परिस्थिति तो है ही और पेपर तो मेरा ही है और मुझे ही पार करना है, मेरे ही कर्मों का फल है। इसलिए वास्तव में ज्ञान तो यही कहता है कि हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण यही हुआ, इसके कारण ये हुआ। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, तीन उंगली तो अपने तरफ करते हैं और चार उंगली अपने तरफ और एक उंगली उसके तरफ, तो उसे बदलना चाहिए, उसने ऐसे किया उसे बदलना चाहिए, लेकिन चार गुना तो किसको बदलना है, किसको बदलना है, हमको बदलना है। इसलिए ये परिस्थितियां तो आती रहेगी, अंत तक आती रहेगी, लेकिन अगर हमारी स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थितियों पर हम बहुत जल्दी विजय पा सकते हैं। अगर स्वस्थिति सही ठीक नहीं है तो परिस्थितियां बढ़ती जाएगी और हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, लेकिन इससे हम कोई खुद कोई खुश नहीं होते हैं। हम भी तो महसूस तो करते हैं ना, गलती हमारी थी। पर कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो जिसमें कोई भी दोषी नहीं है। प्रकृति के कारण भी परिस्थितियां आती है। अभी सर्दी है तो ये परिस्थिति है, कभी गर्मी है तो परिस्थिति है, बारिश है बहुत जबरदस्त, तूफान है, आंधी है, ये परिस्थिति है, प्रकृति की परिस्थिति है। अब वो परिस्थिति आ गई मानो, पर हम रोने बैठेंगे क्या? अगर रोने भी बैठे तो क्या वो परिस्थिति बदल जाएगी? हम दुखी भी होते रहेंगे तो क्या परिस्थिति बदल जाएगी? बदलेगी तो नहीं, वो तो है। इसलिए परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, परंतु हम अपनी स्थिति को जरूर बदल सकते हैं। अब बारिश आ गई, हम बारिश को कोसते रहे, देखो मुझे अभी बाहर जाना था, ये बारिश आ गई, अभी आना था बारिश को, मुझे तो बाहर जाना है, मुझे तो ये करना है, वहां जाना है, ये बारिश तुम अभी क्यों आई? अब बारिश का अपना समय है, तो बारिश को कोसने की बजाय हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, छाता ले जाएंगे और क्या, क्योंकि छाता तो हम ले सकते हैं ना। इसलिए परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी स्थिति को बदल सकते। इसी प्रकार दूसरे को हम बदल नहीं सकते, तुम ये मत करो वो कहेगा करूंगा, तुम ये मत कहो कहेगा कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मुझे कहाँ रोक सकते हो। हाँ, आजकल तो किसको भी कुछ भी कह देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रीडम है, भारत स्वतंत्र देश है, अंग्रेजों के जमाने में तो ऐसे कुछ भी कह सकते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं कदम उठा सकते थे। अभी स्वतंत्र है तो हम जो चाहें सो कहें, जो चाहें सो करें, लेकिन हाँ कुछ तो नियम है जरूर जिनका हमें पालन करना होगा, नहीं तो सजा है। इसलिए अगर दूसरा कुछ कहता है करता है और हम सोचे वो बदल जाए, अब वो नहीं बदलेगा तो हम भी उन जैसे ही बन जाते हैं। मिसाल देते ना, समझो अब किसी के घर गए और उसके घर में हमको निमंत्रण था भोजन का, और उसने तो एक ही सब्जी और थोड़ी सी और हल्की पतली सी दाल बना दी बस, और भोजन दिया, मना कोई खातरी नहीं की, जैसे मेहमानों की खातरी होती है। अब अगली बार मैं उसको बुलाऊंगी अपने घर में तो मैं यही कहूंगी क्या, इसने तो मुझे बस एक सब्जी और पतली सी दाल खिलाई, मैं भी ऐसे ही करूंगी। हम क्या करेंगे? अगर मुझे अच्छी तरह खाना पकाना आता है और मैं स्वादिष्ट भोजन बना सकती हूँ, मेरे पास समय भी है और मैंने निमंत्रण दिया है, तो मैं तो मेहमान नवाजी करूंगी। ये तो नहीं उसने ऐसे नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने ये किया तो मैं भी करूं, तो टिट फॉर टैट उस रूप से तो नहीं होगा ना। चलो उसने नहीं किया, होगी होगा कुछ कारण, पर मेरे में तो क्षमता है तो मैं क्यों वो ही बात करूं। तो मैं तो बदल सकती हूं, ये नहीं कि उसके कारण मैं भी उन जैसे ही बन जाऊं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते हो, व्यक्तियों के संस्कारों को आप बदल नहीं सकते हो, उनकी सोच को आप बदल नहीं सकते हो। हाँ, बदल तब सकते हो जब आपके अंदर इतनी शक्ति होगी मनसा की, केवल वाचा की शक्ति से काम नहीं चलेगा, पर मनसा की इतनी शक्ति होगी जो मन से आप उनके लिए इतना ऊंचा सोचो, जो वो आपकी वो ऊंची सोच उस तक पहुंचे और वो आपके आगे सरेंडर हो जाए। लेकिन अगर आपकी भी विचारधारा उसी अनुसार चलेगी तो ये तो कर्मों का हिसाब किताब और ही बढ़ेगा, इसलिए आप उसको बिल्कुल और ही नहीं बदल सकोगे। पर कब बदल सकोगे? जब आपकी मनसा इतनी ऊंची होगी। इसलिए स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को आप बदल सकते हो, पर वो स्वस्थिति क्या है? आज बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति से स्वस्थिति बनती है, पर वो अव्यक्त स्थिति भी कैसे बनती है? जब बाबा हमें इतना स्वमान देते हैं, उस स्वमान को याद करने से हमारी अव्यक्त स्थिति बनेगी, जिससे ही फिर स्वस्थिति बनेगी और उससे परिस्थिति को हम जीत सकेंगे। तो हर मुरली में बाबा हमको कितने स्वमान देते हैं, और बाबा कहते रोज एक एक स्वमान याद करो। आज भी आपको स्वमान मिला, मैं विजयी आत्मा हूं, एक एक ही स्वमान ले लो, मैं विजयी आत्मा हूं, भगवान मेरे साथ है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं विजयी थी, विजयी हूं, विजयी रहूंगी, ये एक ही स्वमान लो तो ऑटोमेटिकली अंतर में शक्ति आ जाएगी। नहीं तो परिस्थिति आई और हम बैठ जाएंगे वहीं, भाई क्या करें, परिस्थिति आ गई, हम बैठ गए तो बैठ ही जाएंगे, और वो परिस्थिति बदल भी जाएगी, लेकिन हम उसी परिस्थिति को याद करते रहेंगे और अंदर ही अंदर डरते रहेंगे। अभी कोरोना काल आया, लोग कितने डर गए, अभी फिर डराते ही रहते हैं। अभी ये थर्ड वेव आया है, अभी तो ये हो रहा है, अभी तो वो हो रहा है, परंतु जो बिंदास है वो उनको तो परवाह ही नहीं है। और कई तो इतना डरते रहते हैं। तो देखा गया है जो बहुत डरते हैं उनको ही अटैक करता है ना, ऐसे भी होता है कई बार। तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन फिर क्या कहते हैं भाई, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने अंदर जो आपकी प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाओ। तो उसको अगर बढ़ाएंगे तो वो वायरस आपको अटैक नहीं करेगा, तो वायरस वही अटैक करेगा जहाँ कमजोरी है। तो प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए भाई गिलोई खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। हाँ, भारत में फिर भी इतना क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव है, नेचुरोपैथी का बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण भारत में हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति है वो अच्छी है, माना कंपैरेटिवली और देशों की भेंट में। इसलिए वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, भले हमको लगता है कि भारत में बहुत हुआ, लेकिन विदेशों में कम नहीं हुआ है, और ही ज़्यादा हुआ है। लेकिन वहाँ के जो मीडिया है ना, वो इतना एक्सपोज नहीं करती है, और भारत की मीडिया बहुत छोटी सी बात को भी इतना बड़ा कर देगी जो बात मत पूछो। मिसाल देते हैं कि जब न्यूयॉर्क में वो ट्विन टावर्स पर वो आक्रमण हुआ तो कितने लोग मरे, कैसे जले, क्योंकि सारी बिल्डिंग जल गई ना, गिर गई, ये बहुत कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने मीडिया में एक भी ऐसा चित्र नहीं दिया जो ऐसा भयावह दृश्य हो, एक भी नहीं दिया। वर्णन जरूर किया लेकिन दिखाया नहीं। परंतु भारत में जरा सा कुछ हुआ, इतना दिखाते और छोटी बात को वही रिपीट करते रहेंगे। नहीं तो उनकी मीडिया का महत्व क्या होगा? तो मीडिया ऐसा हो गया है। परंतु विदेशों में ऐसे नहीं है, इसीलिए वहां का पता ही नहीं चला, इतना नहीं पता चला। परंतु भारत फिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पारिवारिक भावनाएं हैं, वहां तो वो भी नहीं है विदेशों में, कई देशों में जो जिनके अंदर वो भारतीय संस्कृति के नजदीक है वहां तो फिर भी है, परंतु जो पश्चिमी संस्कृति है वहां तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए दुख अशांति तो कितना है और अंदर की आत्मिक स्थिति भी ठीक नहीं, क्षमता ही नहीं है। बाहर से तो लगता है वाह वो देश बड़े विकसित है, लेकिन अंतर में खाली है, बिल्कुल खाली है। मैं तो कितने देशों में गई हूँ, बाबा के बच्चे और बाहर वाले लोग उनके बीच में कितना अंतर, जैसे यहाँ भी हम देखते हैं ना बाबा के बच्चों में और बाहर के जो नॉन ब्राह्मिन्स है उनमें कितना अंतर है। क्योंकि बाबा ने हमको जो ये ज्ञान दिया है वो सर्वोच्च ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार से हम अपनी स्वस्थिति को इतना ऊंच बना सकते हैं कि कोई परिस्थिति हमको हिला ही नहीं सकती है। सबसे पहली तो स्वस्थिति है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अब चलो कुछ हो भी गया तो आत्मा तो नहीं मरेगी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हाँ, मैं अपना मिसाल सुनाती हूँ कि एक बार कैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारा, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। वो गाड़ी जो है वो या तो खाई में गिर सकती थी या तो खंबे को लग करके दो टुकड़े हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। एक व्यक्ति को बचाने के लिए गए, परंतु फिर उसको भी लगा और वो टर्न किया और उस समय तो हमको ऐसे लगा कि बस बाबा हम आ रहे हैं आपके पास बाबा, और ऐसे अशरीरी बन गई, बस बाबा के सिवा कुछ याद नहीं था, बाबा हाँ बस बाबा ही बुक से निकला। और फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो हम तो जिंदा है जिंदा है। तो वो न खाई में गिरी न कोई वो खंबे से टकराई, लेकिन वहाँ झाड़ियाँ थी और वो झाड़ियों में जाकर के ऐसे लेट गई, शीशा टूट गया, व्हील निकल आई, पता नहीं क्या क्या हुआ, परंतु बहुत जोर से आवाज हुआ बहुत कुछ, लेकिन बस वो थोड़ी सी लेट गई जैसे ना, और बस एक खरोच तक नहीं आई, एक खरोच होता ना थोड़ा बहुत लगता है वो भी नहीं आई। हाँ इतना जरूर था कि हम तीन बहनें पीछे बैठी थी, मैं साइड में थी और बीच में एक पतली बहन थी, उस पर एक मोटी बहन थी, तो वो जैसे हुआ ना वो बीच वाली जो पतली थी वो तो सीट के नीचे ही बैठ चली गई और वो जो मोटी थी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी लेकिन हम तो उसी समय जैसे बाबा की याद में ही थे और पर कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे बाबा ने हम गोद में उठा दिया। तो उस समय एक ऐसा सुंदर अशरीरी अवस्था का अनुभव हुआ और ऐसे लगा जैसे कुछ समय के लिए जो हृदय की गति रुक गई, ऐसे कुछ अनुभव हुआ, लेकिन इतना मन शांत था, इतना मन शांत था, जो बात मत पूछो, क्योंकि अशरीरी बन गए ना, तो अशरीरी बन गए तो उसका जरा भी सेक नहीं आया और फिर तो सब ठीक ही था। तो कहने का भाव है कि स्वस्थिति पर स्वस्थिति कैसे परिस्थिति को बदल सकती है। और बाबा कई बार कहते हैं कोई भी ऐसी बात आए बस बाबा कहो तो क्या होगा, बाबा वहां रक्षक बैठा है, लेकिन ये बाबा चाबी यूज करना आए सही रूप में। मैं दूसरा भी मिसाल देती हूँ, हम श्रीलंका गए थे कोरोना से पहले, तो वहाँ एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सुनामी आया था श्रीलंका में, और वो बहन अपनी कुछ सखियों के साथ सागर के किनारे पर थी और एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आया। वो सुनामी में तो वो लहर इतना ऊंचा उठती है, तो वो एकदम ज़बरदस्त ऊंची लहर उठी और तीनों को बहा के मना, जैसे बहा रही थी और ले गई, तो उसी समय इसने क्या कहा, बाबा, इतना जोर से बाबा कहा। और अचानक वो उसी बीच एक ऐसी लहर आई जो इसको वापस किनारे पर फेंक दिया, और वो दो तो बह गए जो वो ज्ञान में नहीं थी, और वो दो बह गई और ये बच गई। तो वो बता रही थी कि बस बाबा जो हमने कहा ना, तो बस बाबा ने जैसे हमको ये सारी परिस्थिति कोई बदल दिया, नहीं तो मैं भी बह के जा सकती थी, डूब सकती थी, लेकिन जैसे वो कहाँ से लहर आ गई और हम सागर के किनारे पर फिर से जैसे हमको छुप फेंक दिया, मतलब बच गई, उसको कुछ थोड़ा बहुत लगा होगा लेकिन कुछ नहीं। परंतु वो बता रही थी कि एक ऐसा नया जीवन मिला हमें, ये बाबा ने हमें जीवन दिया, नहीं तो ये जा सकता था। और वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, बड़ी बिजनेस है उसकी, तो कहती बस अभी तो मेरा ये बाकी का जीवन बाबा के लिए है, बाबा ने मुझे बचाया है तो ये जीवन बाबा के लिए। तो इतनी सेवा करती है, मुझे सारा श्रीलंका बाय रोड घुमाया, और फिर लास्ट में एयरपोर्ट पर लेकर भी, एयरपोर्ट से लेने भी आए, एयरपोर्ट पर छोड़ने भी आए, लेकिन अपना अनुभव बीच बीच में सुनाती रही। तो बहुत ही जैसे बाबा के प्रति निश्चय, तो जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वस्थिति से परिस्थिति पर भी जाए, अगर उस समय हम डर जाए, उस समय हम चिल्लाना शुरू कर दे तो क्या होगा, क्या होगा, या तो परिस्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन वो चलो परिस्थिति आई, क्या हम उस समय ये सोच सकते हैं कि ये तो सूली से कांटा हो गया, क्या पता इनसे और भयंकर परिस्थिति आती होती, पर ये बाबा कहा तो वो परिस्थिति सूली से कांटा हो गई। तो इतनी बड़ी परिस्थिति आ सकती थी, पर क्योंकि मेरी स्वस्थिति अच्छी थी तो वो परिस्थिति बदल गई। इसलिए हम परिस्थिति को कोसेंगे नहीं, ये क्यों हुआ, इसको नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, जो भी, परंतु उसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप लगा देंगे। ड्रामा, ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें इतना ऊंचा दिया है। तो एक तो स्वमान को याद करना है, भगवान हमको किस नजर से देखते हैं और हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं, क्या हम उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं। मैं आपको और मिसाल बताऊं, एक भाई थे, उस समय जब बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे तो एक एक से बाबा मिलते थे, 89 तक तो बाबा ने पर्सनल मुलाकातें की है, सारी सारी रात बाबा मिलते थे। तो वो और एक एक से मिलना कोई कम बात थोड़ी है, तो विदेशियों के ऊपर जैसे मैं ट्रांसलेशन करती थी, उनको एक एक का ट्रांसलेशन सारी सही रात हम करते थे, तो एक विदेशी नहीं आया, विदेशी भाई वो आया नहीं मिलने के लिए। और बाबा की मना पूरा हो रहा था, बाबा का वो एक इंडिविजुअल मिलना, तो आया नहीं। तो फिर मैंने किसी के हाथ संदेश भेजा कि वो भाई क्यों नहीं आया बाबा से मिलने के लिए, उसको जल्दी भेजो। तो गई ढूंढने के लिए, अच्छा वो आया भी, लेकिन जैसे जबरदस्ती आया, तो बाबा के सामने आने में डर रहा था, परंतु हमने बुलाया तो आ गया। तो बाबा ने उनसे, अब वो बाबा को देखे ही नहीं, क्या पता क्या उनके अंदर में होगा, बाबा उनको दृष्टि दे और बाबा से दृष्टि ले भी नहीं, ऊपर देखे फिर नीचे देखे, अंदर में मन खाता होगा उसका, कोई ऐसा कर्म होगा, तो फिर नीचे देखे, फिर ऊपर एक सेकंड देखे, फिर नीचे देखे। तो मैंने उसको कहा बाबा से दृष्टि लो, तो फिर जैसे दृष्टि दी, पर अंदर में वो जैसे घबरा रहा था। तो बाबा ने उनसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बाबा ने पूछा, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो कहता नहीं सीधा कह दिया नहीं। तो देखो बाबा ने कैसे उसे हाँ करवाया। तो बाबा ने तो उसने कहा नहीं बना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपने को नहीं समझता हूँ। तो बाबा ने कहा आप कौन हो? तो कहा मैं आत्मा हूँ। अच्छा आत्मा किसकी संतान है? बाबा प्रश्न ही करते रहे और जवाब उनसे ही लिया। आत्मा किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? है। आप उसकी संतान हो? तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो? कहता है उसी समय कह दिया हूं हाँ है। तो एक एक शब्द से जैसे बाबा प्रश्न करते गए आखिर उससे हाँ कहलवाया। मेरे साथ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हम पहली बार 1974 में विदेश जा रहे थे, अफ्रीका के, अफ्रीका का निमंत्रण मिला था। तो वेदांती बहन जो अभी अफ्रीका में ही है संभालते हैं और हम दोनों गए थे। तो बाबा मैं तो उस समय ना भी 74 की बात है, ये कितने साल हो गए। तो उस समय मैंने बाबा से एक प्रश्न किया, बाबा आप हमको इतना दूर भेज रहे हो तो बाबा अगर विनाश हो गया तो? मैंने बाबा से प्रश्न किया। तो क्योंकि ये एक हवा थी, अफवाह भी थी कि 76 में विनाश होगा। तो 76 में विनाश होगा और इतना दूर विदेश जा रहे हैं और अगर विनाश हुआ तो हम तो वहीं रह जाएंगे, मधुबन में कैसे कब आएंगे? तो फिर तो मैंने कहा बाबा अगर विनाश हो गया तो? तो बाबा मुस्कुराए मेरे भोलेपन पर, कैसा प्रश्न पूछ लिया। तो बाबा ने मेरे से पूछा, प्रश्न में ही जवाब मेरे से ही लिया। बाबा ने पूछा कि आपको कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है? तो हमने कहा बाबा भेज रहे हैं। तो बाबा भेज रहे हैं, बाबा ने कहा तो फिर जिम्मेदार कौन? तो मैंने कहा बाबा, क्योंकि वो भेज रहा है तो जिम्मेदार बाबा। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा जिम्मेदार है तो आपको ख्याल क्यों चलता है? बात खत्म। बात ही खत्म। जो भेज रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, जो आज्ञा कर रहा है, हमको खाली आज्ञाकारी बन के फॉलो करना है। तो जिम्मेदार कौन हो गया? वही हो गया जो भेजता है, जो आज्ञा करता है। तो इसीलिए ये भी एक वास्तव में स्व स्थिति को भूल जाते हैं कि हम किसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। परंतु ये तब याद आएगा जब सचमुच हम श्रीमत पर चलते होंगे। तो अगर जैसे आज भी बाबा ने कहा सच्चाई, आज भी हाँ सच्चाई, सच्चाई होगी, सफाई होगी, आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, फरमान बरदार होंगे, बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करते होंगे, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे पहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हम उस परिस्थिति का कैसे सामना करेंगे? स्वस्थिति से हर बार कोई अटैक करने की जरूरत थोड़ी है। डिफेंस भी एक आधार है हमारे, जो भारत के अंदर या सब देशों में इतने उनके हथियार होते हैं, लेकिन वो हथियार होते हुए तो अटैक के लिए ही ना, आक्रमण के लिए है हथियार, लेकिन वो क्या कहते हैं? डिफेंस। तो सारा जो मिनिस्ट्री है वो डिफेंस की है, माना जो हथियार है वो आक्रमण के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। तो बाबा भी कहते हैं कि ये ज्ञान आपकी रक्षा के लिए है। जो बाबा स्वमान देते हैं वो आपकी रक्षा के लिए है। भले उस समय हो सकता है आप न भी हो, जैसे हमारे लिए भी कई कहते बाबा ने हमें कहा, जैसे बहन जी ने बताया कि सरस ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर रही, बाबा ने मुझे वरदान दिया। क्योंकि मैं उस समय वहाँ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स जो हैदराबाद में है, उनके एग्जीक्यूटिव्स यहाँ आए थे, उनका कोर्स कराया था, बहुत कुछ उनको जैसे ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। और बाबा आए थे बाप दादा, तो वो बाबा से मिले। तो जब बाबा से मिले मैंने ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन क्योंकि हिंदी नहीं जानते थे तो ट्रांसलेशन किया, और फिर लास्ट में जब सबका पूरा हो गया तो मैं कई आगे बाबा के हाथ आगे बढ़ा टोली लेने के लिए। तो बाबा ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी और टोली हाथ में पकड़ा कि जोर से पकड़ा हाथ, जैसे बाबा उसी स्नेह से शक्ति भरकर। तो फिर बाबा ने उसी समय मुझे वरदान दिया, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने वरदान दिया। तो मैं तो हैरान हो गई क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो कुछ भी वरदान एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ये सोचा था कि सबका तो मैंने ट्रांसलेशन कर लिया, बाबा टोली देंगे हमको, क्योंकि कहीं मिलते ही रहते थे बाबा से तो, और हर बार बाबा से जब भी मिलते थे कुछ न कुछ वरदान मिलता ही था। बहुत से अथक सेवाधारी हो, दिल से सेवा करती हो, दिल का तीर दिल को लगता है, मना बहुत बाबा बहुत सुंदर सुंदर वरदान देते रहे। लेकिन ये तो एक अलग ही प्रकार का वरदान था। लेकिन उसके बाद मेरा मन बहुत चलने लगा। किस बात पर चलने लगा? बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया है तो जरूर बाबा को मेरे से कुछ बड़ा काम कराना है। इसलिए बाबा ने पहले से शक्ति भर दी ताकि वो मैं बड़ा काम कर सकूं। तो क्या काम कराना होगा बाबा को, अभी उस समय तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जरूर मैंने सोचा कि बाबा को कुछ कराना है। परंतु दूसरी सोच क्या चली कि बाबा ने अगर ये मुझे वरदान दिया है तो इस जुबान से, क्योंकि सरस्वती विराजमान है, तो इस जुबान से कोई भी अज्ञान के बोल हमको नहीं बोलने, कोई कटु वचन, कोई कड़वे वचन, किसको दुख देने वाले वचन इस जुबान से नहीं निकल सकते, इस मुख से नहीं निकल सकते, क्योंकि सरस्वती विराजमान है। मानो ये ऐसे बुद्धि में आया तो सचमुच मैं बिल्कुल ऐसे बदल गई कि इतना कंट्रोल अपने ऊपर किया, जैसे बाबा ने आज भी कहा कि कंट्रोलिंग पावर हो, फिर उसके बाद परिवर्तन करने की भी शक्ति हो, तो अपने अंदर देखने की भी शक्ति हो, ये सब शक्तियां तो हमें चाहिए ही जरूर। तो इसीलिए पावर टू चेंज भी चाहिए, अपने को बदलने की भी शक्ति चाहिए। तो इसीलिए हमने यही सोचा, तो सचमुच से सब बदल गया हमारा। नहीं तो ऐसे अल्लड़पन में तो कुछ भी कह देते थे, कितना कुछ हो, जरमुई जगमुई बाबा कहते नहीं करो, हो जाता था। अभी छोटे थे तो अलबेलापन भी था, बहुत कुछ था, लेकिन बाबा ने जो ये वरदान दिया तो जैसे अंदर से शक्ति आ गई। वरदान कोई बाहर से थोड़ी शक्ति मिली, शक्ति कहाँ से मिली, वो तो शब्द थे, लेकिन शक्ति कहाँ से आई, वो तो भीतर से आई ना, क्योंकि हमारे ही परिवर्तन से वो शक्ति का अनुभव हुआ। और फिर सचमुच उसके बाद ये टीवी में लेक्चर्स का निमंत्रण मिला। तब तक दूरदर्शन ही था तो टीवी में तो कभी ब्रह्मा कुमारियों को कोई प्रोग्राम नहीं मिलता था, क्योंकि गवर्नमेंट चैनल ही था। लेकिन ये 93 की बात है, जिस 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और बहुत राइट्स हुए थे सारे भारत में, हिंदू मुसलमानों के बहुत झगड़े हुए थे, तो प्राइवेट चैनल उसी समय 93 में शुरू हुआ, जी टीवी, और उसमें हम लोगों को निमंत्रण मिला और दादी जी ने मुझे भेजा। तो सचमुच हमने अंदर में सोचा ये बाबा देखो त्रिकालदर्शी बाबा, उनको पता था कि ये मुझे सेवा करनी है, तो बाबा ने पहले से ही जैसे शक्ति भर दी। तो ये अनुभव करते हैं, तो स्वस्थिति कैसे परिस्थिति को बदल सकती है। कई ऐसी बातें आएगी, हम सामना करने की शक्ति का जो चित्र है वो दिखाते हैं। अब किसकी मृत्यु हो गई, बहुत नजदीकी था वो, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था उनसे, अब मृत्यु हो गई। कोरोना में तो कितना दुख दुनिया में था, अचानक कैसे कोरोना के कारण मृत्यु, कितने मरे। अब दुख क्या कर सकते हैं, हिसाब किताब इतना ही था, पर अब अगर रोने बैठ जाएं तो क्या होगा, आत्मा तो वापस आएगी नहीं। कई हमें मिले, अभी भी हम बॉम्बे से फ्लाइट में आ रहे थे, एक माता हमारे पास में बैठी थी और रो रही थी। मैंने कहा माता जी, अकेली थी और वो अभी फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई थी तो वो ये मोबाइल पर उनकी बेटी से बात कर रही थी, उसका वो वीडियो भी देख रही थी, तो बार बार उसकी बेटी कहे मम्मी रो नहीं, मम्मी रो नहीं, मम्मी रो नहीं। अब मुझे आया कि आखिर हुआ क्या है जो ऐसे कर रही है, अकेली जा रही है। तो फिर उसके बाद जब फ्लाइट चली तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या बात है। तब उसने बताया कि उसके पति की डेथ हुई है और वो इतने बड़े प्रोफेसर थे, ये थे वो थे, और कोरोना में ही डेथ हुई। एक साल उसको हुआ, वो पिछले साल ही हुआ था या इसी साल शुरू में हुआ था इसके कारण, और उसके बाद इसका रोना बंद ही नहीं हुआ है। बेटी ने बुलाया तो भी बंद नहीं हुआ रोना, काफी समय बेटी के पास थी, बेटों के पास थी। अब वापस अपने उसका घर तो राजस्थान में ही था, उदयपुर में, लेकिन रोना बंद नहीं हो। तो फिर उसको ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भाई जैसे बाबा हमें कहते हैं कि अच्छा वो आत्मा गई, अब आप कितना भी रो लो आत्मा वापस तो आएगी नहीं ना, वापस आए तो खूब रो लो, हाँ आ जाएगी वापस। और वो शरीर भी नष्ट हो गया, वो भी तो वापस नहीं आएगा। अच्छा किससे मोह था, आत्मा से मोह था या शरीर से मोह था? जो रो रही हो आपका मोह किस में था, शरीर में मोह था या आत्मा में मोह था? किस में मोह था? शरीर में मोह था। जब शरीर में मोह होता तो रख देना चाहिए था, अब वो कोरोना में शरीर छोड़ा, वो तो बॉडी भी नहीं देते खत्म, बॉडी भी नहीं देंगे, वो ही करते हैं सारा संस्कार, अंतिम संस्कार या जो भी है। तो देखो जो भी हुआ, लेकिन अब अच्छा रोते रहेंगे, अच्छा आत्मा में मोह है तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो जो अजर अमर अविनाशी है उसके लिए क्या रोना। चलो विनाशी में आप विनाशी के लिए रो सकते हो, अब जैसे कोई विनाशी चीज है, ये ग्लास की कोई चीज है, शीशे की, वो टूट जाएगी तो कितना ध्यान से उसको संभाल के रखते हैं ताकि गिरे नहीं, टूटे नहीं। परंतु कई बार वो स्टील की चीज है तो चलो गिर भी गई तो भी टूटेगी तो नहीं ना, तो इतना तो ध्यान नहीं देते। पर शीशे की चीजें, वो चाइना ये क्ले की चीजें, वो प्लेटें जो भी है उसका कितना कितना उसको संभालना पड़ता है, तो संभाल उनकी करनी पड़ती है जो टूट सकता है। अब जो टूटेगा नहीं तो फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बर्तनों को ऐसे फेंकते हैं। तो अब अविनाशी तो आत्मा है, अब अविनाशी आत्मा के लिए क्या रोना। फिर उसको ज्ञान देती गई, पूरा एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, वो उदयपुर भी आ गया और उस समय उसको इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। फिर मैंने उससे पूछा आप कहाँ रहती हो, तो बताया कहाँ रहती हो, और बिल्कुल हमारे सेंटर के पास उसका घर। तो कहती मैं तो बोर्ड तो देखती थी और एकदम जैसे चेहरा ही बदल गया, जो रो रही थी पूरा चेहरा ही बदल गया, और कहा कि हाँ मैं आऊंगी जरूर। तो देखो बाबा ने सेवा करवाई, लेकिन अज्ञान काल में मनुष्य कैसे दुखी होते हैं। तो परिस्थिति को तो बदला नहीं जा सकता है ना, कोई परिस्थिति आएगी, अभी किसने मुझे दो गाली दी तो क्या करेंगे, हम रोएंगे चिल्लाएंगे, फीलिंग में आएंगे, या उसको दो का चार सुनाएंगे, हम चार सुनाएंगे तो आठ सुनाएगा, हम आठ सुनाएंगे वो सोलह सुनाएगा, वो सोलह सुनाएगा तो हम बत्तीस सुनाएंगे और वो कहाँ पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेंगे। हाँ ओम शांति भी हो सकते हैं ना तो ऐसे है, इसलिए चलो वो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी स्वस्थिति कैसे बनाएं, ये नहीं कि ऐसे क्यों बोल रहा है, ये क्यों कर रहा है। बाबा कहते नहीं, उस समय आप क्या सोचो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अभी कल ही कोई बहन आई तो बता रही थी किसी के लिए, कहा कि बहन जी उसको बहुत गुस्सा है, अपने पति के लिए बोला, बहुत गुस्सा है बहन जी, बहुत गुस्सा है। तो मैंने कहा तो गुस्सा है तो आप क्या करती हो जब उसको गुस्सा आता है? तो कहती है मैं उस समय ये सोचती हूँ, नहीं ये शक्ति स्वरूप आत्मा है। मैंने कहा ऐसे नहीं सोचो, शक्ति स्वरूप तो और शक्ति दिखाएगा। क्योंकि वो तो बाह्य शक्ति दिखाई रहा है ना गुस्सा करके, तो आप उस समय ये शक्ति स्वरूप आत्मा है ये शुभ भावना में तो और ही जास्ती शक्ति दिखाएगा गुस्सा करके। आप उस समय ये भावना रखो कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उसका अपोजिट क्या है? क्रोध का अपोजिट तो शांति है ना, क्रोध का अपोजिट शक्ति थोड़ी है, क्योंकि क्रोध ही एक फिजूल रूप में तो एक शक्ति है ही, परंतु शांति उसका अपोजिट है, प्रेम उसका अपोजिट है। तो या तो उसके प्रति अगर अच्छी भावना रखनी भी है क्रोध करने वाले पर भी, तो ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो भावना एक है जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, ये हमारे अंदर से निकले। तो शुभ भावना माना हम उसी ऊंचे स्वरूप में उसको देखें कि ये आत्मा, बिल्कुल उसका अपोजिट सोचें, और वो जो अपोजिट सोचेंगे वो जो एक शक्ति बन जाएगी वो उसके अवगुण को मिटाएगी, मदद करेगी। तो कोई भी रूप हो तो उसका अपोजिट सोचें, इसको कहते हैं स्वस्थिति। तो स्वस्थिति में जब बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति और उसके लिए स्वमान, तो उसमें भी कई लोग पूछ जाते हैं कि एक होता है स्वमान और दूसरा होता है अपमान, अभिमान। तो स्वमान और अभिमान दोनों के बीच में एक सूक्ष्म रेखा है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये स्वमान है या अभिमान है। हम उसको स्वाभिमान समझ लेते हैं, है अभिमान लेकिन वो स्वाभिमान समझ लेते हैं, पर स्वमान बाबा सही शब्द करेक्ट करते हैं, अभिमान से जुड़ना नहीं चाहिए। तो स्वमान, तो स्वमान माना आत्मा का मान, और वो स्वाभिमान जो कहते हैं वो देह अभिमान के आधार पर स्वाभिमान है। अब किसने मुझे अच्छी तरह व्यवहार नहीं किया, आगे से मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, क्यों, क्या समझता है वो मुझे, मैं भी कोई कम हो क्या, ये स्वाभिमान समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये अभिमान है, चलो वो कुछ भी मेरे लिए सोच रहा है पर मैं तो सही सोचूं ना। तो स्वमान माना क्या, आत्मा का मान, अपनी आत्मा का मान। शांति मेरा मूल स्वभाव है, कुछ भी हो जाए मेरी शांति कोई भी ले नहीं सकता, मेरी शांति कोई छीन नहीं सकता। बाबा यहां तक कहते शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी न छूटे, खुशी न जाए। क्यों खुशी न जाए, शरीर भले छूट जाए खुशी न जाए माना, क्योंकि खुशी शांति प्रेम आनंद आत्मिक सुख ये आत्मा का स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को कैसे भूल सकते हैं, हर एक को अपना स्वभाव प्यारा लगता है, हर एक को अपना जो मूल स्वभाव है उसी स्वभाव पर वापस आएगा। जैसे पानी का मिसाल देते हैं तो पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता। अब चाहे अग्नि का समावेश करें, हीट गैस पर चूल्हे पर हम पानी रखें और पानी को उबालें, अब उबलेगा ठीक है, लेकिन उसको फिर छोड़ दो, अग्नि बंद कर दो, गैस बंद कर दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी वापस ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल स्वभाव शीतलता है। पानी का, जल का मूल स्वभाव शीतलता है। हर एक चीज अपने मूल स्वभाव तक जाती है, वापस जाती है। हर एक चीज अपने मूल स्रोत तक जाती है। जब पानी गिराते हैं तो पानी गिराते हैं तो पानी नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है? ऊपर की ओर क्यों नहीं? आप कहेंगे पानी भारी है, ये है या जो भी है, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ है क्योंकि पानी का जो स्रोत है वो सागर है और सागर नीचे की तरफ है, तो पानी कहाँ जाएगा? आखिर वापस अपने स्रोत की तरफ जाएगा जो उसका सागर, उसका स्रोत है। सब नदियां वापस कहाँ जाएगी? सागर में जाएगी, वहीं से निकली है। हम दिया सलाई जलाते हैं और अग्नि ऊपर की ओर जाती है, तो ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर क्यों जाती है? क्योंकि अग्नि का स्रोत कहाँ है? अग्नि का स्रोत कहाँ है? सूरज। ये जो अग्नि, तो स्रोत अग्नि का स्रोत सूरज है, सूर्य से ही तो निकलती है रोशनी या गर्मी जो भी, तो वो वापस अपने स्रोत तक जाती है, वहीं से निकली है, वहीं वापस जाएगी। आत्मा कहाँ से आई है? परम धाम से आई है, तो वापस कहाँ जाना है? परम धाम ही जाना है। ये पंच तत्व कहाँ से आए हैं? प्रकृति से आए हैं, तो वापस प्रकृति में ही जाने हैं। हर चीज वापस अपने स्रोत के पास जाएगी, हर चीज अपने मूल स्वभाव में वापस जाएगी। तो बाबा भी जो हमें कहते हैं कि बच्चे अपने मूल संस्कार को पहचानो, और हम बच्चे कहते क्या करे बाबा, ये मेरा पुराना संस्कार है, पुराना संस्कार है। और बाबा क्या कहते, पुराने से पुराना संस्कार तुम्हारा कौन सा है? ये द्वापर कलयुग का संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संस्कार, हाँ ये हमारा मूल संस्कार है? नहीं, मूल संस्कार तो अनादि और अविनाशी गुणों के आधार पर है। जो आत्मा के मूल गुण है वही हमारा ओरिजिनल संस्कार है, जो हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। तो अगर वही मेरा ओरिजिनल संस्कार है तो ये संस्कार तो नहीं है क्रोध स्वरूप, लोभ स्वरूप, मोह स्वरूप, अहंकार स्वरूप, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। और जो मैं बाबा के घर में जहां से मैं आई हूं वही मुझे जाना है, तो उसी को याद करना है। आज बाबा ने कहा परम धाम को याद नहीं करना है, परम धाम में शिव बाबा को याद करना है। लेकिन बाबा कई बार ये भी कहते हैं परम धाम घर को याद करो और नई दुनिया को याद करो, पर घर माना कोई ऐसे नहीं बस वो लाइट 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 घर को याद करो, पर घर में किसको याद करो? आप किसके घर को याद कर घर में याद करते हो? भाई हमको फलानी जगह जाना है, फलाना ब्लॉक नंबर है, फलाना प्लॉट नंबर है, फलाना नाम की बिल्डिंग है, भले उसको याद करेंगे लेकिन उसमें खाली उस चीज को थोड़ी याद करेंगे, मकान को। आप किसको याद करेंगे? उस मकान में रहने वाले को। वो तो इसीलिए मकान तो ठीक है, ब्रह्म मत तत्व ठीक है, वह आत्माओं का घर है। और बाबा कहते केवल घर को याद करने से तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन उस घर में जो पतित पावन बाप रहते हैं और वो मेरा भी घर है, उसको याद करो तो आत्मा के जो पाप है वो भस्म होंगे। तो इसलिए घर को वापस जाना है, जिस स्थान से हम आए हैं वहां वापस जाना है। इसलिए बाबा हमको कहते ये याद की यात्रा में रहो, सारे ज्ञान का सार मन मना भव है, तो मन को मेरे में लगाओ, तो हर कदम पर आत्मा को अपना स्वमान याद रहे, अपने मूल गुण याद रहे। इसलिए मेरा स्वमान है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरी शांति कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। मैं बेपेंदी का लोटा थोड़ी हूं, बेपेंदी का लोटा होता है ना, उसको नीचे से पेंदी नहीं होती है, माना खड़ा नहीं रहता है, तो क्या होता है, कभी इधर लुढ़का कभी उधर लुढ़का, तो जिसकी स्थिति बदलती रहती है उसको क्या कहेंगे, बेपेंदी का लोटा। स्थिति बदलती रहती है, मूड बदलते रहते हैं, सवेरे देखो तो कितनी अच्छी मूड और आते आते दिन में इतनी ऐसी मूड हो जाती है, और शाम को तो इतना ऐसी मूड जो बात मत पूछो, गुस्सा ही गुस्सा। कई हमारी माताएं बोल कहती है भाई पति अपने युगल को ये बात कहो, बहन जी पहले मैं मूड देखूंगी है? मैं मूड देखूंगी, मूड अच्छी होगी ना तो कितनी भी बड़ी बात वो स्वीकार कर लेगा, पर मूड अच्छी नहीं होगी तो छोटी बात भी वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मूड देख करके ही बात करनी होती है, तो हर एक की मूड देख करके बात करनी होती है। पर योगियों की मूड का बिगड़नी चाहिए क्या? कभी अंदर में मूड ऑफ, कभी तो अंदर में नाराज, कभी फीलिंग, कभी क्या कभी क्या। नहीं, योगियों की तो जो स्थिति होती है एक रस। तो एक रस स्थिति कैसे रहेगी? जब आत्मा स्वमान में रहेगी, और स्वमान या स्वस्थिति वो उसका आधार अव्यक्त स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है। इसलिए बाबा हमको बार बार यही अभ्यास सिखाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने मूल स्वरूप को पहचानो। तो जब भी समय मिले अपने मन बुद्धि को कैसे बदलना है, ये परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। पहले होती है चेकिंग, हाँ, चेक एंड चेंज। हम लोग चेकिंग तो बहुत करते हैं, अभी नया साल आ रहा है परसों से, तो नया साल जनवरी का महीना, अव्यक्ति महीना, क्या करेंगे इस अव्यक्ति महीने में? बाप समान बनना है ना सभी का लक्ष्य, आपका ये भट्टी का लक्ष्य भी यही है, चलो संपन्नता की ओर, बाप समान बनना है। तो बाबा ने क्या किया, कितनी परिस्थितियां बाबा के सामने आई, कोई कम नहीं आई। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, तो बाबा कई बार कहते हैं ना वो कैसे एग्जीबिशन जला डालते हैं, ये करते वो करते, बहुत एंटी पार्टी तो क्या नहीं करते रहे, पहले तो बहुत था, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले ये आर्य समाजी बहुत विरोध करते थे, बहुत तोड़फोड़ करते थे, सेंटरों पर आकर के या एग्जीबिशंस में आग भी लगा देते थे, बहुत कुछ करते थे। तो कलकत्ता में ये ऐसे हुआ था, पूरी एग्जीबिशन ही उन्होंने उनको आग लगा दी। तो बाबा को ये पत्र बाबा को लिखा गया, और तो अखबार में भी आ गया, ब्रह्मा कुमारियों का ऐसे किया, और थोड़ा कुछ विरोध भी लिखा। तो बाबा को समाचार दिया गया, बाबा उस वहां की अखबार का नाम है विश्वामित्र, अखबार का नाम है, कलकत्ता में जो अखबार निकलती है वो फेमस अखबार है विश्वामित्र। तो बाबा ने जगदीश भाई को कहा, बच्चे उसके एडिटर को आप पत्र लिखो, आपकी अखबार का नाम विश्वामित्र है, पर सबसे अच्छे मित्र आप हमारे हो, सबसे अच्छे मित्र आप हमारे हो। कैसे? जो आपने विरोध में लिखा है ना, क्योंकि वो पैसा देते होंगे, जिन्होंने किया वो पैसा दिया होगा तो उनके फेवर में लिखा, तो सबसे बड़े मित्र तो आप हमारे हो जो आपने ये लिखा, क्योंकि इसके आधार से लोग और आएंगे, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और ही अच्छी हो जाएगी, तो ये प्रोपेगेंडा हो जाएगी कि भाई जाके देखे तो सही क्या क्या ये क्यों ऐसे लिखा है, तो जाके देखे, तो देखने का आकर्षण बढ़ जाएगा, तो ये तो और ही सर्विस हो गई ना, जिस सर्विस में क्या समाया है, सर्विस समाई हुई है। तो इसलिए बच्चे घबराओ नहीं, एडिटर को लिखो, और फिर वो एडिटर को उसको लिखा गया, उसको फिर निमंत्रण देकर सेंटर पर बुलाया गया, तो वो तो कितना बदल गया, इतना बदल गया। फिर उसके बाद उसने फिर बहुत अच्छी रिपोर्ट डाली, उसी नहीं डाली, तो ऐसा होता है लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो फिर एडिटर का जवाब भी आता है, तो ऐसे है। तो बाबा कैसे अडोल रहे, क्या क्या बाबा के सामने उन कलंक लगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को कलंक नहीं लगे, वो तो चौथ का चंद्रमा देखा और कलंक लगे, श्री कृष्ण को नहीं लगे, तो किसको लगे? शिव बाबा को लगे, ब्रह्मा बाबा को लगे, शिव बाबा को तो लग ही नहीं सकता है, हाँ ब्रह्मा बाबा को लगे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को ये कलंक लगे, पर ब्रह्मा बाबा ने कैसे उसका सामना किया, जरा भी परवाह नहीं की, जरा भी परवाह नहीं की। बाबा कहते थे बच्चे ये इनको कुछ पता नहीं है, एक दिन आएगा ये समझेंगे, समझेंगे। सिंध में भी बहुत हुआ, वो सिंध में का सिंध की सिंधी अखबार का जो एडिटर था उसने भी बहुत विरोध में लिखा था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में वो जब भारत आया और सब भारत में आए तो फिर बहनें उनसे मिलने के लिए गई और उसको ज्ञान समझाया, और फिर वो मधुबन आया था, बाबा से मिला और बाबा से इतनी क्षमा मांगी, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो आपके विरुद्ध ऐसे लिखा। फिर तो इतना अच्छा हो गया वो, जो हर रोज अपने अखबार में कोई न कोई ब्रह्मा कुमारी का वो ज्ञान लिखता था, तो बदल गया। खुद ही क्षमा मांगने आ जाते हैं जब उनको महसूसता होती है ना कि गलत किया हमने, पर तब तक हम विरोध करें, हम भी लड़ना शुरू कर दे तो थोड़े बदलेंगे। तो स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलना ये बहुत जरूरी है, और जब ये परिस्थिति को बदलेंगे ऑटोमेटिकली जो स्वर्ग की दुनिया बाबा कहते हैं ना वो आएगी, क्योंकि चेक एंड चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वो परिवर्तन शक्ति आते आते विश्व का परिवर्तन तो हो ही जाएगा। तो हम सब क्या करेंगे, क्या करना है, हमारा नारा क्या है, ब्रह्मा कुमारियों का नारा क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये सदा याद रखो, मुझे बदलना है और क्षमा करके भूल जाना है। कई बार हम क्षमा तो कर लेते हैं, चलो इसने कुछ भी कहा कुछ भी किया क्षमा कर लेते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। भूलना भी बहुत जरूरी है, क्षमा कर लिया पर जैसे वो मेरे सामने आएगा ना मेरा मुंह फिर जाएगा तो अगर मुंह फिर गया इसका मतलब क्या है, क्षमा तो कर दिया, बदला नहीं लेना है, चलो छोड़ो बदला नहीं लेना है, पर मुंह फिर गया माना हाँ, माना भूले नहीं है ना, याद है, पर भूले ही पूरा भूल जाए, याद ही न रहे। एक होता है जैसे बाबा ने भी कल कहा या कहा कि वो आती है जैसे कंप्यूटर में लिख करके कुछ लिखते भी है ना, अगर उसको डिलीट करना है तो बस डिलीट का बटन दबाओ वो डिलीट होता जाएगा। पहले तो भाई लिखते थे तो रबर से हम वो इरेज करते थे निकालते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दाग रह जाता था। अभी कंप्यूटर पर तो हाँ कोई दाग भी नहीं रहता है, सब पूरा साफ हो जाता है, डिलीट किया खत्म हो गया। तो इसीलिए डिलीट करना है, खाली इसको रब नहीं करना है, ऐसा डिलीट कर देना है जो बुद्धि में बिल्कुल याद न रहे, क्योंकि अगर ये याद भी रखेंगे ना तो अंत में बहुत पश्चाताप होगा, क्यों वो याद आएगी सब बातें, वो बातें याद आएगी, इसने मेरे साथ किसका बोल याद आएगी वो बातें, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे किया था, और फिर अब मरने की घड़ी आएगी तो भी वो बातें याद आएगी। तो कोई भी आदत जिसको हम नहीं बदल सकते वो अंत में धोखा देगी, वही सामने आएगी। जैसे कोई डायबिटिक होता है ना, डायबिटीज होती है, किसका बज रहा है बंद कर, तो जैसे कोई डायबिटिक होता है तो उसका तो कोई ना कोई अंग को जाकर के अटैक करता है, वो कमजोर हो जाता है, चाहे किडनी चाहे हार्ट चाहे लिवर चाहे ब्रेन या दांत या कुछ भी, तो जो कमजोर होगा ना वही अटैक करेगा। इसीलिए कोई भी कमजोरी नहीं हो, किसी भी अंग में कमजोरी नहीं हो, जब हम कहते हैं ना ये पांच विकार, एक एक जो अंग कहो या कहेंगे कि पांच जो ये ऑर्गन्स है हमारे, जैसे कई हम कहते हैं ना भाई स्पर्श रस, कई पांच रस है, पांच इंद्रियां हैं, तो उनके फिर कई रस पंच रस है, तो ये इंद्रियां एक एक विकार का सूचक है, अगर उनके वश हो जाते हैं तो एक एक इंद्री एक एक विकार के वश हो जाती है। काम वासना क्या है, ये स्पर्श रस है, स्पर्श, बस स्पर्श, बाकी और कुछ है नहीं। स्पर्श, आकर्षण, चमड़ी का आकर्षण। और चमड़ी का आकर्षण कहां तक ले जाता है देखो, आज क्या नहीं दुनिया में हो रहा है। चर्म रसी तो है खाली, उसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म हल्के से हल्का स्वरूप क्या है, चमड़ी का आकर्षण का। आप एक म्यूजियम में जाते हो, वहां लिखा रहता है प्लीज डोंट टच, कृपया हाथ मत लगाइए, सब जगह लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए। अब हम पढ़ते हैं हाथ मत लगाइए और क्या करते हैं, हाथ लगाते, पढ़ते हुए हाथ लगाते। इसका मतलब पढ़ना तो आता है ना भाई, पढ़ना ना आता हो और ऐसे हाथ लगा रहे, तो पढ़ भी रहे और हाथ भी लगा रहे। भाई हाथ नहीं लगाओ ना, कौन क्यों हाथ लगा रहे, पर ये स्पर्श रस है और उसका ही विकराल स्वरूप काम वासना। तो स्पर्श रस, फिर होता है दूसरा है क्रोध। तो क्रोध क्या है, नेत्र रस। मन का दर्पण चेहरा है, लेकिन चेहरे में भी सबसे पहले आंखें। गुस्सा आता है अंदर में तो कैसे निकलता है गुस्सा, मुंह से बाद में निकलता है, पहले आंखों से निकलता है, पता चलता है उसको बड़ा गुस्सा है, भले बोला एक शब्द भी नहीं। तो क्रोध वो आंखों से निकलता है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये स्पर्श रस निहारे प्यारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, तो ये स्पर्श रस आकर्षण नहीं करेगा। ये देह अलग चीज है, मैं अलग हूं, और ये आंखें शीतल बनाओ, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। क्रोध की आंखें नहीं बनाओ, क्रोध की आंखें बनेगी तो आपको ही नुकसान होगा। फिर लोभ, वो कौन सी इंद्री है, जीव रस। तो स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध, ये जीव रस। अंत में वही याद आएगा, कोई जिसको जीव रस होती है ना, तो खाने पीने का बहुत शौक, खाना पीना, हाँ यही चाहिए वही चाहिए। वो मरते वक्त भी कहेगा, एक बता रहे थे कोई कि उसको ये सीताफल बहुत प्यारा था, तो मरने वक्त भी सीताफल चाहिए, सीताफल चाहिए। सीताफल कहाँ से आएगा, सीजन नहीं थी लेकिन सीताफल सीताफल करते मर गई। तो सीताफल को याद किया तो पता नहीं कहाँ जन्म लेगी तो ये लोभ, अंत में वही कमजोरी सामने आएगी, तो हमारी जीभ। फिर मोह, वो कौन सी इंद्रिय है, ये नाक। तो नाक, जिसी से बहुत मोह होता है ना, उसको हम इतना प्यार करते, इतना जैसे नाक रगड़ते रहते हैं उनके साथ उनकी ही हमें गंध चाहिए, सुगंध चाहिए, तो ये मोह की निशानी है। और अहंकार, ये कान, कन रस। किसी ने मेरे विरुद्ध कुछ कहा, अरे क्या समझता है, मैं भी कुछ हूँ, हाँ दिखाऊंगा, तो ये कान खड़े हो जाते हैं अपनी कोई ग्लानी सुनी तो। लेकिन ये कान क्या है, चलो ग्लानी सुनी भी, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दो। बाबा मेरे लिए क्या सोचता, मनुष्य तो कुछ भी सोचेंगे, मैं कौन, तो फिर वही स्वमान याद आता है। तो ये पंच इंद्रियां पंच विकारों का प्रतीक है, और इसलिए बाबा कहते हैं शरीर को भूलो भूलो, आत्मा के स्वमान में रहो। फिर देवता के स्वमान में भी रहना है, मैं क्या बनने वाला हूं, लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, बाबा हर बार कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ और चिंतन करो, मैं ऐसा बनने वाला हूं, बनने वाली हूं, तो नशा चढ़ेगा। और नशा चढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वही अंत मते सो गते, तो क्यों नहीं बनेंगे। इसलिए क्या याद रखना है, क्या भूलना है, क्या छोड़ना है, ये सब बाबा हमें देते हैं। सारी दिनचर्या की श्रीमत देते हैं। आज भी बाबा ने कितनी श्रीमत दी, अभी शादी में जाना है तो भले जाओ, मना थोड़ी है, पर जरूरी थोड़ी है कि वहां का भोजन खाना है। आप फ्रूट ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, कुछ बस कहीं भी जाना है भले जाओ, बाबा मना थोड़ी करते हैं। लेकिन कैसे रहो, अनासक्त वृत्ति हो, अनासक्त हो, उपराम हो, जाओ भले न्यारी और प्यारे रहो, उसमें फंसो मत, तो फंसो कहीं भी नहीं। और छोड़ो कुछ भी नहीं, अब क्या जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें जाना पड़ता है, भले मना थोड़ी है, बाबा मना थोड़ी करते, प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में तो सब निभाना भी पड़ता है, लेकिन क्या न्यारे होकर के कर सकते हैं, क्या अनासक्त होकर के कर सकते हैं, या जीभ में रस आएगा कि देखते हुए भी न देखूं, मुंह में पानी ना आवे, ये है बाबा कहते अपनी परीक्षा। तो जो परीक्षाएं आती है वो तो आएंगे, लेकिन मैं कितना अनासक्त हूँ, कितना न्यारा हूँ, कितना बाबा का प्यारा हूँ, बाबा की नजरों में हूँ, बाबा के दिल पर हूँ, वो अपने आप को देखना है। तो वो स्वस्थिति होगी तो परिस्थिति कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको मिल करके। हाँ, मैंने कहा चलो आखिरी दिन भी आपसे मिले। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 15 मिनट बैठेंगे बाबा की याद में। अब
सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सांसों में तेरी सरगम, सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी, गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए, जिंदगी हुई हसीन तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण, तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण, अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद, बेहद है प्यार तुमसे कैसे तुम्हें बताऊं, बिन तेरे मैं तो बाबा एक पल भी रह न पाऊं, एक पल भी रह न पाऊं, मन में अपार खुशियां पासाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद।
तो चलिए कुछ मिनटों के लिए हम इतनी ऊंची स्वस्थिति बनाए जो सब परिस्थितियों से ऊपर हो जाए, आत्मा अपने स्वमान में स्थित हो जाए, मैं कौन हूं, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, अविनाशी हूं, इस सृष्टि पर मेहमान हूं, पर मैं महान हूं, मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ हीरो एक्टर हूं, सारी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, मैं आत्मा भगवान के साथ हूं, उनका ही साथ सर्वश्रेष्ठ साथ है, उनकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूं, मेरे सर्व संबंध उनके ही साथ है, इसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर मन को अति शांत करते हैं। शांति की शक्ति अनुभव करें। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूँ। ऐसी हल्की स्थिति हो जाए, न्यारी प्यारी स्थिति हो जाए, बेदाग हीरा बन जाए।